हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। जो व्यक्ति दिव्य चेतना से युक्त नहीं है, वो गुणों की जो एक मान लीजिए को व्यक्ति समुद्र में है, तो उसकी जो लहरें हैं उसको थपेड़े, लहरों के थपेड़े उसको इधर से उधर लेके जा रहे हैं। ऐसे ही पूरा जगत रजगुण तमगुण और सतोगुण, इनकी लहरों के द्वारा हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। सतोगुण में होगा तो वो गहरा चिंतन में करेगा, विचार करेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। रजोगुण में होगा तो सोचेगा कि मुझे जगत में कुछ महान करना चाहिए, और तमोगुण में होगा तो सो जाएगा और आलस करेगा। तो इस प्रकार से ये एक और उदाहरण, हम लोग जो है इन गुणों के लहरों की वजह से इधर से उधर पटके जा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। तो यहां भगवान इस बात को बता रहे हैं कि आत्मा का इस शरीर की इन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। और इस चीज को आप और दूसरे एंगल से देखेंगे, जिस प्रकार से पपेट्स को क्या बोलते हैं, पुतलियों को रस्सियां खींचती हैं, और ऐसा अगर रस्सी बहुत पतली हो तो ऐसा लगता है कि पुतलियां अपने आप कार्य कर रही हैं। उसी प्रकार से ये जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, ये हम सब आत्माओं को या हमारे शरीरों को क्रियान्वित कर रहा है। तो कैसे बाहर निकल सकते हैं? जब व्यक्ति धीरे धीरे इस बात को समझे कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं और मैं भगवान का अंश हूं, और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, तो इन गुणों के द्वारा जो हम लोगों को पुशिंग मिलती है उसके अनुसार कार्य ना करके व्यक्ति भगवान की सेवा में नियोजित होता है, तो तुरंत ही गुणों के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। तात्पर्य को देखेंगे। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। यानी कि हम लोग चेतना से युक्त हैं, जबकि पदार्थ जो है वो अपरा शक्ति है और चेतना शून्य है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। इसका अर्थ है कि ये हम नहीं समझ सकते कि कितने समय से हम लोग इस जगत में हैं, कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, कितने करोड़ों अरबों खरबों युग बीत चुके हैं, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये बीमारी जो है ये बहुत क्रॉनिक है, अपने को शरीर मानना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक साल दो साल पांच साल जब कर लिया तो ये भावना तुरंत नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये केवल एक जन्म के कर्म के अनुसार नहीं होता है। इस शरीर से हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म का फल हमको तुरंत ही शरीर में प्राप्त नहीं हो जाता है, कई जन्म उसके लिए व्यक्ति को भोगना पड़ सकता है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक दुख सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्म तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे छालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। बहुत ही सुंदर परपट है प्रभुपाद जी का। तो हम लोग इस शरीर के स्वामी तो कतई नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रियाओं के बारे में हम जानते ही नहीं है कि वो क्रियान्वित कैसे हो रही है। दूसरा, जब इस शरीर से निकलने का समय आएगा तो हमें प्रकृति के द्वारा तुरंत निकाल दिया जाएगा और हम ये नहीं कह सकते कि अब हम इस शरीर में और रहेंगे, थोड़ी देर और रहने दीजिए, तो ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम इस शरीर में किराएदार हैं और इसका उपयोग, इस शरीर का उपयोग हमें कुछ समय के लिए अपने पूर्वगत कर्मों के अनुसार कर दिया गया है शरीर। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्रों का आधार लेकर के समझ पाता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। अब एक और बात यहां समझ में आनी चाहिए, स्वभावस्तु प्रवर्तते, पहले इस पर चर्चा करेंगे फिर हम अब वापस उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे कृष्ण के दास के रूप में। देखिए, आत्मा शुद्ध है, अर्जुन आत्मा के रूप में पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन उनका एक शरीर का क्षत्रिय का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ क्या होता है, हर शरीर में हम कुछ कार्य करते हैं और उस कार्य करने का संस्कार बन जाता है और उस संस्कार के अनुसार हमारी प्रवृत्तियां हो जाती हैं, जो कि रजोगुण तमोगुण असतोगुण से मिश्रित हो सकती हैं। तो जो कार्य एक ब्राह्मण को करने के लिए बहुत आसान होते हैं, शांतिपूर्वक रहना, संयम से रहना, शास्त्र पढ़ना, वो कार्य एक क्षत्रिय के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो कार्य एक क्षत्रिय के लिए होगा, तेज शौर्य, वो बहुत आसान होगा क्षत्रिय के लिए, वो कार्य एक ब्राह्मण के लिए बहुत मुश्किल होगा करना। या फिर ब्राह्मण से बोला जाए कि आप लोहा मतलब मट्टी खोदिए एक शूद्र की तरह, तो बहुत मुश्किल होगा। शूद्र को बोलिए कि आप ध्यान करिए या फिर आप कुछ भी पढ़ने लिखने का काम करें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो समाज में हम देख रहे हैं सबका अलग अलग स्वभाव है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आपको एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि ये आपका स्वभाव है, लेकिन जब इस स्वभाव के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं तो अपना दायित्व पूर्व कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए और शरीर की आसक्ति से आवृत नहीं होना चाहिए। कैसे होते हैं, जब हम शरीर की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को बहुत अधिक पूर्ण करने में लग जाते हैं तो हम इस शारीरिक चेतना से बद्ध हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले जन्मों में किया है। थोड़ा इस बात को समझिए, शरीर की इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को जितना अधिक हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक ये भावना हमारे हृदय में बढ़ जाएगी कि हम ये शरीर हैं। क्रिया हमारी चेतना को प्रभावित करती है, तो हम अपने शरीर में बहुत सारी चीजें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे पंख उगाएंगे और हम उड़ने लग जाएंगे। कुछ चीजों को हम धीरे धीरे परिवर्तित कर भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई योग इत्यादि करता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे सोने की आदतें, ऐसे करके। तो उदाहरण के लिए, जैसे हम बार बार खाते रहेंगे, खाने के बीच के समय में खाते रहेंगे, तो हमारी ये आदत बहुत बढ़ जाएगी और अपनी इंद्रियों को संयमित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जितना हम अपने शरीर को इच्छाओं को इस प्रकार से पूर्ण करने में लगे रहेंगे उतना ही शी भावना कि मैं शरीर हूं ये और बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि किसी भी योग पद्धति में सबसे पहला क्या होता है, योग इंद्रिय संयम्य। योग का अर्थ ही है अपने इंद्रियों को संयमित करें। और भक्ति योग में ये क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, अपने इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में सीधे इस्तेमाल करते हैं, अलग से हम कुछ और संयम करने की आवश्यकता नहीं करते। तो बहुत ही डायरेक्ट तरीका है, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं और जब अपनी इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं तो ये गुणों के प्रभाव के अनुसार नहीं होता, बल्कि अद्भुत बात यह है कि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है प्रकृति के गुणों के द्वारा, उसको हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शूद्र स्वभाव का है तो मंदिर का सफाई कर सकता है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है तो शास्त्र पढ़ करके दूसरों को बता सकता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का है तो वो मंदिर की रक्षा कर सकते हैं, या समाज में भी इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि लोगों की आध्यात्मिक हित की रक्षा हो। कोई वैश्य है तो धन कमा करके भगवान के प्रचार कार्य में, सेवा में इत्यादि उपयोग कर सकते हैं। तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो कार्य करना हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है हमारे स्वभाव के अनुसार, वो जब कृष्ण को समर्पित कर दिया जाता है तो हम इन गुणों में रहते हुए भी गुणों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति समुद्र में गिरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति समुद्र में ही है लेकिन अब वो नाव पे स्थित है, तो नाव क्या है, ये ज्ञान कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और व्यक्ति कार्य उसी तरह से करे, शूद्र की तरह करे, चाहे ब्राह्मण की तरह करे, चाहे कैसे भी करे, लेकिन अपने कर्मों को सीखे कि वो कैसे कृष्ण को से वो जोड़ सकता है। और भगवान की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति जो उनकी सेवा में लगा हुआ है वो ऊंचा नीचा नहीं है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैष्णव, कोई भी हो, अगर उनकी सेवा कर रहा है, सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा की ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण उससे प्रसन्न हो, तो निश्चित रूप से भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके उस व्यक्ति का हृदय का ज्ञान अपने आप ही वो नष्ट कर देते हैं। तो इस बात को भगवान आगे भी बताएंगे कि जो प्रीतिपूर्वक उनका भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं उनको बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो उनको प्राप्त कर सके। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो बहुत बड़े आचार्य हुए, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के गुरु थे और बहुत बड़े वो विद्वान भी थे, तो उन्होंने अपने आश्रम के एक माली की परीक्षा ली। कई साल तक से माली से सेवा कर रहा था और वो भगवान के बारे में सुनता था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो भगवान के बारे में वैष्णवों से सुनता था और अपनी सेवा करता था, हरि नाम जप करता था। तो आधे घंटे तक उसकी परीक्षा लिया और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ठीक से दिया। तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत अधः, कि जिस प्रकार से जब जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुख होता है, सेवा करने की इच्छा करता है, सेवा करता है, तो भगवान स्वयं ही उसके हृदय के सारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद दास ने बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो समुद्र के बाहर आए, और ये कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं और हम कृष्ण की सेवा करें और न कि अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार हम कार्य करते बैठे। तो इस प्रकार से हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।